ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जीन सरकार द्वारा वित्त पोषित पहली मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ पवन दुग्गल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत जेन एक अग्रणी पहल जो जनरेटिव एआई में सार्वजनिक सेवा वितरण को क्रांतिकारी रूप से बदलने और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए भाषण और कंप्यूटर दृष्टि में एक श्रृंखला के मौलिक मॉडलों के विकास पर केंद्रित है और हाल ही में इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आईटी विशेषज्ञ पवन दुग्गल। पवन जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
पवन जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जेन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं?
देखिए, जो बदलाव की हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं और आजकल अगर एकमात्र ऐसा शीर्षक या टॉपिक है जो सबके लबों पर है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर पर जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो स्वरूप जो स्वयं अपने आप से ऑडियो वीडियो इमेज या टेक्स्ट जेनरेट करता है। आप केवल कमांड देते हैं और उसके आधार पर ये सिस्टम जो है अपने विशिष्ट प्रकार की जो आउटपुट है वो देने का प्रयास करता है। क्योंकि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सदुपयोग गवर्नेंस में है, राष्ट्रीय हित के मामलों में, इसलिए भारतीय सरकार ने अब एक ऐसी अग्रणी पहल की है जिसकी तुलना आज से पहले की नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव कभी लिया ही नहीं किया गया था। ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम है भारत जेन। ये भारत का पहला स्वतः जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्रांति लेकर आए और जो नागरिकों की एंगेजमेंट है सरकार के साथ ऑनलाइन इकोसिस्टम में उसमें बढ़ावा दिया जाए विभिन्न प्रकार के स्वीट ऑफ फाउंडेशनल मॉडल्स के आधार पर। अब ये स्वीट जो हम लोगों ने बनाए हैं ये लैंग्वेज स्पीच और कंप्यूटर विजन के आधार पर बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भारतीय सरकार कमिटेड है कि भारत के अंतर्गत अपना इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव होना चाहिए। और हम लोगों ने ऑलरेडी इस इनिशिएटिव का लॉन्च भी देखा है, 30 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के साइंस और टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ इसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो नई पहलू हैं वो सामने नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये भारत जेन भारत को एक ग्लोबल लीडर जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टिकोण में उसके दिशा में स्थापित करने का प्रयास है। और जैसे भारतवर्ष ने, आप देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो, यूपीआई की बात हो, आपने एक अपना ही स्टैंडर्ड दुनिया भर में स्थापित किया है, ठीक उसी दिशा में इसको भी मैं एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप मानता हूं जो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्रांति ले आएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का भारतवर्ष में और लोगों की महत्वाकांक्षाओं का एक प्रतीक भी जरूर होगा।
पवन जी, आपने कहा क्रांति ले आएगा, भारत जेन जनरेटिव एआई के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है, इस पे थोड़ा सा और आपसे जानकारी चाहेंगे।
देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की भारत की बात करते हैं, तब ऑब्वियसली फोकस सरकार का ये है कि भारतवर्ष में हम स्वयं होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को उत्पन्न कर सकें और उसे वर्ल्ड लीडरशिप पोजीशन की दिशा पर ले जा सकें। इसी दिशा में ये जो फिलहाल भारत का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव हुआ है, मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर सरकार ने फंड किया हो किसी भी राष्ट्र में कोई मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसका उद्देश्य ये रहा है कि हम चाहते हैं कि हम एक इफेक्टिव और इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो उसको विकसित कर सकें। और इसको विकसित करने में योगदान दिया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का रहा है। और ये जो भारत जेन लॉन्च हुआ है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। भारत जेन का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में हम ऐसे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कर सकें जो भारतवर्ष में भारतीय भाषाओं में हाई क्वालिटी टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कॉन्टेंट जो है वो उत्पन्न कर सके। प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी वर्तमान मल्टी मॉडल्स उपलब्ध हैं वो सब जो है अंग्रेजी भाषा में, तो वो जेनरेट अंग्रेजी में तो करते हैं लेकिन भारतीय भाषाओं में वो बहुत ज्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं है। तो अब क्योंकि सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय भाषाओं में उत्पन्न किया जाने वाला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आउटपुट है उसकी तादाद बढ़ जाने वाली है, उसकी क्वालिटी में इजाफा हो जाने वाला है और अल्टीमेटली ये जो हमारा पहल है भारत जैन, ये उन भारतवासियों के लिए है जो गांव में है, छोटे शहरों में है, कस्बों में है, जो आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं लेकिन इस भारत जैन के माध्यम से अपनी ही भाषा में, अपनी ही डायलेक्ट में अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की सेवाओं को और विशिष्ट रूप से उनका आनंद भी ले पाएंगे।
पवन जी, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और विस्तार से बताएं और भारतीय भाषाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, इनके लिए इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है?
कहीं ना कहीं हमको समझना है कि जब हम मशीन की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमको विभिन्न लेयर वाले एल्गोरिथमिक मॉडल्स की आवश्यकता होती है। आप केवल टेक्स्ट पर ही अपने मॉडल को आप ट्रेन नहीं कर सकते, आपको विभिन्न प्रकार के जो बिग डेटा सेट्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है, जो मल्टी मॉडल्स होते हैं, वो उतने ही कारगर और उतने ही इफेक्टिव होते हैं जितना कि ज्यादा उसको विभिन्न प्रकार के डेटा पर ट्रेन किया गया हो। अब ये जो भारत जैन जो बनाया गया है वो एक मल्टी मॉडल की तरीके से बनाया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मल्टी लिंगुअल भी है और मल्टी मॉडल भी है, यानी कि इसमें भारतीय जो डेटा है, डेटा सेट्स हैं, उसके बेसिस पर इसमें ट्रेनिंग की गई है और इसकी इतनी क्षमता है कि भारतीय डेटा सेट्स को बिल्ड कर सके और साथ ही साथ ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी के विकास में भी अपना योगदान है। और अल्टीमेटली जब आप भारत में खुद निर्मित इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके लॉन्च के साथ ही साथ हम अग्रसर हो रहे हैं एक नई दिशा में, जहां पर हम अल्टीमेटली चाह रहे हैं कि एक डेवलपमेंट बन जाए इकोसिस्टम का, जो जेनरेटिव इंटेलिजेंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च को और ज्यादा प्रोत्साहन कर सके। फिलहाल इसका लॉन्च हुआ है, अगले 2 साल में उम्मीद की जा रही है कि ये 2 साल में पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा और अल्टीमेटली इस तरह के मॉडल की जो बेनिफिट है या सहूलियत है ना केवल सरकारी एजेंसीज को मिलेगी बल्कि साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स को मिलेगी, शिक्षित संस्थानों को मिलेगी और शोध करने वाले जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मिल पाएगी। भारत जैन की खासियत यह है कि ये केटर करेगा टेक्स्ट को भी और स्पीच को भी, यानी कि अगर आप उसके उपभोक्ता हैं तो आप टेक्स्ट में इसमें भारतीय भाषाओं में सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब आपको मिलेगा, आप उससे अपनी भारतीय भाषा में उससे बातचीत भी कर सकते हैं और वो आपकी बातचीत के आधार पर आपको जवाब देगा। और क्योंकि देखिए भारत में विविधता में एकता है, हमारे यहाँ डाइवर्स विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिक लैंडस्केप बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, तो इसमें इस तरह के प्रोग्राम को पूरी तरीके से विकसित करने में और उसको पूरी तरीके से परफेक्ट करने में बहुत सारी चुनौतियों को भी मद्देनजर रखा गया है और बाय एंड लार्ज ये प्रोग्राम जो रहेगा ये विभिन्न प्रकार की भारतीय भाषाओं की जो नुक्ते हैं उनको इफेक्टिवली पकड़ेगा और जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल AI मॉडल्स हैं उनमें ये नुक्तों को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया जाता। तो जब हम भारत जैन के माध्यम से ऐसे प्रोसेसेस को विकसित करेंगे जिससे हम कोलेट और क्यूरेट कर पाएंगे भारत सेंट्रिक डेटा, तो हम अल्टीमेटली भारत की जो कल्चरल विविधता है, उसकी जो डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनको हम एक सही रूप से प्रतिबिंबित भी कर पाएंगे। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भारत जैन भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को एक प्रबल रूप से सशक्त करने में एक अहम भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ इस तरह की पहल के साथ साथ जो भारत की साइबर सॉवरेनिटी इंटरेस्ट है, यानी कि साइबर प्रभुता संबंधी इंटरेस्ट हैं, उनको भी एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी राष्ट्र ने नहीं किया है, किसी राष्ट्र की सरकार ने उतनी दूरदर्शिता प्रदर्शित नहीं की है कि आप गवर्नमेंट के फंड के द्वारा आप अपना ही लोकल इंडिजिनस AI मॉडल बनाएंगे और उसके आधार पर अपनी विविध राष्ट्रीय भाषाओं को, डायलेक्ट्स को कवर करेंगे ताकि आपकी जो जनता है वो अपनी भाषा में ही इस एल्गोरिथम के साथ बात कर सके। और हमें समझना होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र हो चुका है, जब सबसे बड़ी तादाद जनसंख्या की भारतवर्ष में है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत जन जैसा मॉडल भारत की बड़ी जनसंख्या की सेवा की दृष्टि में एक अपना अतुलनीय योगदान और कदम रहेगा।
आपके अनुसार भारत जन भारतीय और वैश्विक एआई के भविष्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है और कितना प्रभाव डालता है?
देखिए, अल्टीमेटली जो भारत जन है वो आत्मनिर्भर भारत की जो विजन है उस दिशा में कदम है। अल्टीमेटली अभी तो हमने लॉन्च इसको किया है, इसको भी फर्दर डेवलप करना, फर्दर होन करना अभी बाकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत अब एक संदेश दे रहा है सारे दुनिया भर के प्लेयर्स को कि देखिए भारत आपके ऊपर रिलायबल या निर्भर नहीं होने वाला जब हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इस तरह की भारत जेन के लॉन्च के साथ साथ हम भारत की जो डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम है, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, इंडस्ट्रीज के लिए हो या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए हो, उसको एक नया बढ़ावा देने वाले, क्योंकि अब आपने ऐसा एल्गोरिथम स्थापित कर दिया है जो भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसमें न केवल लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नया आयाम मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ उन्हें अब अपनी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं भारतीय सेंट्रिक कंटेंट और भारतीय भाषाओं का जो कंटेंट या डेटा है उसकी जो तादाद है, उसकी वॉल्यूम है, उसमें भी हमें आने वाले समय में बढ़ावा मिलेगा। तो अल्टीमेटली एआई इकोसिस्टम, एआई इकोनॉमी को भारतवर्ष में थ्राइव करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा।
अभी आपने बात की कि भारत की जनसंख्या और अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, इतने सारे डायलेक्ट्स हैं और जो कि हमारी एक विरासत है, तो भारत जन कैसे सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान प्रदान करेगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी संबोधित करेगा?
भारत जन क्योंकि भारत सेंट्रिक डेटा के आधार पर बनाया गया है, उसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों को न केवल जीवित रखना है बल्कि साथ ही साथ उसका ज्यादा प्रमोशन और प्रोपोगेशन भी करना है। तो अब जब इस तरह का मॉडल उपलब्ध हो जाएगा तो आप आम व्यक्ति, चाहे आप किसान हो, चाहे गांव में आप अपनी किराना की दुकान चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, अब आप इस तरह के मॉडल का इस्तेमाल करते हुए न केवल आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की सेवाओं का इफेक्टिव आनंद उठा पाएंगे बल्कि साथ ही साथ आपको अब एक्सपोजर मिल जाएगा कि भारत की जो विविध संस्कृति है, हमारे यहाँ 5000 साल पुराना इतिहास है, हमारे यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हम कहते हैं कि भारत एक लैंड है जिसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होता है, उन सब की जो विविधता है और उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको इन मॉड्यूल्स में नजर आएगा। तो अल्टीमेटली ये तो भारतीयता की कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बढ़ा के जा रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत की जो डोमेस्टिक आईटी इकोसिस्टम का जो पर्यावरण होने वाला है उसमें जो मैसिव गेम चेंजिंग इम्पैक्ट लेकर आएगा वो लेकर आएगा भारत जन। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के हाथों को ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, भारतीय राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट जो है उनको सशक्त करेगा, भारत की सुरक्षा में भी मुझे लगता है अपना योगदान देगा और एक संदेश देगा पूरी दुनिया भर को कि आप तो देखिए प्राइवेट कंपनीज की द्वारा निर्मित टेक्नोलॉजीज पर आधारित है, हमने भारत के अंदर बैठे हुए ही अपनी इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी निर्मित कर ली है, हम इसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या पर करने वाले हैं और हम शो करने वाले हैं कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र किस तरीके से अपने नागरिकों के हाथों को सशक्त करता है और उनको बलवान बनाता है ताकि उनकी डिजिटल ट्रांजेक्शंस और इफेक्टिव तरीके से एफिशिएंट और कामयाब हो पाए।
तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का और पवन जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत जीन, सरकार द्वारा वित्त पोषित पहले मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।